और वो दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी, उसने जल्दी से अरमान को पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था। एक पल को आस्था को ऐसा करते हुए देखकर अरमान उसमें खोसा गया था, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का विदाउट मेकअप, एकदम गोरा रंग और बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। उसने अपनी घनी पलकें, जो कि बंद कर रखी थीं, अरमान उसे कितनी ही देर तक देखता रहा। अरमान को एहसास ही नहीं रहा कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए थे। तब अचानक ध्रुव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। अरे भाई, संभाल कर संभाल कर, क्योंकि ध्रुव देख चुका था कि अरमान इस वक्त आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ है। इसीलिए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरमान से आवाज लगाई। ध्रुव की आवाज सुनकर अरमान तुरंत अपने हसीन ख्वाब से बाहर आया। आस्था को एक नजर देखने के बाद वो दोनों जल्दी ही एस्केलेटर से उतर गए। तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसने अभी तक अरमान के कोट को पकड़ा हुआ है। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी ध्रुव ने कहा, अरे भाभी, अब ठीक तो है ना? आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके अलावा उसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी वो लोग कपड़ों के एरिया में चले गए। जैसे ही आस्था वहां गई, उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गईं। भला इतने सारे कपड़ों में से वो अपने लिए कपड़े कैसे पसंद करेंगी? वहां पर सारे एक से एक महंगे और ब्रांडेड कपड़े थे। कुछ कपड़े छोटे थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े आस्था पहनती थी, वो कपड़े तो आस्था को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो सोचने लगी कि अब हम यहाँ क्या करें। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी कपड़ों के गोदाम में आ गए हैं। इतने सारे कपड़े, वो भी कितने छोटे छोटे से कपड़े, हम कैसे पहन सकते हैं? आस्था मन ही मन में ये बातें सोच रही थी। तभी अचानक अरमान ने एक रैंडम ड्रेस उठाकर आस्था की ओर बढ़ा दी। जाओ, सबसे पहले जाकर ये कपड़े चेंज कराओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें घबराहट से फैल गई, क्योंकि जो रैंडम ड्रेस अरमान ने आस्था को उठाकर दी थी, एक ट्राउजर और उसके ऊपर शॉर्ट्स कुर्ता था, जो कि काफी ज्यादा फैशनेबल था। उसकी स्लीव्स में सिर्फ एक बारीक सी डोरी थी और उसके अलावा उसमें कोई बाजू वगैरह भी नहीं था। अब जैसे ही आस्था ने कपड़े देखे, वो कभी एक नज़र अरमान को देखती तो फिर उन कपड़ों को देखती। उसने बाकी सबको भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि आकाश और सुमित एक जगह खड़े होकर अपने लिए कुछ शर्ट वगैरह देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान जानबूझकर सेल्स गर्ल्स को परेशान कर रहे थे। कभी उन्हें किसी चीज़ को दिखाने के लिए कह रहे थे, कभी किसी और चीज़ को दिखाने के लिए। और वहीं देव बस एक जगह लैपटॉप लेकर वहीं पर बैठ गया था और अरमान का आगे का काम करने लगा था। अरमान भी अपने आईपैड में अपने काम में बिजी था। अब आस्था बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, किससे अपनी परेशानी शेयर करे, क्योंकि आस्था ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। इनफैक्ट उसने तो आज इस तरह के देखे भी पहली बार थे। उसके गांव में तो सभी नॉर्मल सलवार सूट या अनारकली सूट या पजामा सूट, ऐसे कपड़े पहनते थे। औरतें साड़ियां या घाघरा चोली पहना करती थीं। लेकिन इस तरह के कपड़े, जिनमें केवल बाजू के नाम पर हल्की सी तानी थी और नीचे से और काफ़ी शॉर्ट और ऊपर से लेकर तक कपड़े को अच्छी तरह से देखकर आस्था को काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करके अरमान से कहने की कोशिश की, लेकिन अरमान जी, ये कपड़े? तब अरमान बिना आस्था की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मेरा सारा दिन बर्बाद करना चाहती हो? एक बात याद रखना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जरूर किसी न किसी प्लान के तहत मेरी जिंदगी में आई हो। लेकिन याद रखना, अरमान सिंघानिया को जब भी तुम्हारे खिलाफ इतना सा भी सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करो। वैसे भी अपने इस गंदे कपड़ों की वजह से तुमने काफी ड्रामा खड़ा कर दिया है मेरा। अरमान ये सारी बातें अपने मुंह से बोल रहा था, लेकिन अपनी आईपैड स्क्रीन देख रहा था। और आस्था को अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है और उसने ऐसा क्या किया है जो अरमान उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बेबस होकर ड्रेस को देखने लगी कि फिर चेंजिंग रूम किस तरफ है। इधर उधर देखकर चेंजिंग रूम ढूंढने लगी, क्योंकि आस्था जब प्रियंका और उसकी मामी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी, तब प्रियंका ने कितने ही सारे लहंगे वगैरह ट्राई किए थे जो वो शादी में पहनने वाली थी, तो इसीलिए उसे पता था कि चेंजिंग रूम वगैरह में जाकर चेंज करते हैं। लेकिन ये जो मॉल जिसमें वो इस वक्त अरमान के साथ आई थी, ये सबसे अलग था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। लेकिन आस्था अब कोई भी बात बोलकर अरमान को एम्बेरस्ड फील नहीं करवाना चाहती थी। आस्था सोचने लगी थी कि शायद अरमान जी ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह से अरमान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। वो इतने अमीर आदमी हैं और उनकी बीवी बिल्कुल गवार है, उसे किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए आस्था को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वेल, जल्दी ही उसे लेडीज चेंजिंग रूम का साइनबोर्ड दिखाई दे गया। आस्था जल्दी से वो ड्रेस लेकर उस ओर चली गई। उसने जल्दी से वो कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। ड्रेस और ट्राउजर पहन ली थी। ऊपर से उसने वो बारीक सी डोरी वाला जो कि टॉप के शक्ल में था उसे पहन लिया था। वो टॉप केवल आस्था को थाई तक ही आ रहा था। आस्था को अपनी थाई से नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा खाली और वियर्ड सा लगने लगा था, क्योंकि आस्था जब भी कोई सूट या कुर्ता वगैरह पहना करती थी वो सिर्फ घुटनों से नीचे तक का ही पहना करती थी, और अनारकली सूट तो उसका पूरा नीचे पंजों तक हुआ करता था। लेकिन ये जो अरमान ने उसे रैंडमली टॉप उठा कर दिया था, ये तो उसकी केवल थाई तक ही आ रहा था, और ऊपर से उसमें बाजू तक नहीं थी। आस्था को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हालांकि उन कपड़ों में आस्था बेहद ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और ब्यूटीफुल लग रही थी। आस्था ने उन कपड़े पहन तो लिए थे, लेकिन उसे अपने हाथ और कंधे काफी ज्यादा नंगे और खुले खुले से महसूस हो रहे थे, और क्योंकि उस टॉप का गला काफी ज्यादा डीप था, तो जिसकी वजह से आस्था की काफी ज्यादा कमर, साथ ही बड़ा गला होने की वजह से उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इन कपड़ों को पहनकर बाहर जा सके। वेल, जब आस्था को लगा कि वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा पाएगी, तो उसने जो अपने पहले कपड़े पहने हुए थे उसने उस कपड़ों में से अपना दुपट्टा ले लिया था, और उस दुपट्टे को अच्छी तरह से सिर्फ अपने हाथों पर, अपनी चेस्ट और कमर पर लपेट लिया था। और उसके बाद वो दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, अचानक से उसे लगा कि मानो बाहर से दरवाजा बंद हो। आस्था को लगा कि शायद दरवाजा अटक गया है, इसीलिए आस्था ने दरवाजा खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। डरकर फिर आस्था ने जोर से दरवाजा पीटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलिए प्लीज, हम अंदर रह गए हैं, कोई है, दरवाजा खोलिए प्लीज। वहीं थोड़ी सी ही दूरी पर एक सेल्स गर्ल के साथ खड़ी हुई मलाइका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसी ने आस्था को चेंजिंग रूम से दरवाजे को बाहर से लॉक करने के लिए सेल्स गर्ल से कहा था,
ताकि आस्था अंदर बंद हो सके। और ऊपर से वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, तो इससे आस्था को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती थी। सेल्स गर्ल को ये काम करने की अच्छी खासी कीमत दी गई थी, इसीलिए उस सेल्स गर्ल ने आस्था के जान के साथ खिलवाड़ किया था। वहीं मलाइका ने देखा कि जब सेल्स गर्ल ने उसका दिया हुआ काम कर दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि जब से आस्था अरमान के साथ मॉल में आई थी, तब से मलाइका की गहरी नजरें उसे देख रही थीं, और जब एस्केलेटर से अरमान ने आस्था को ऊपर लेकर जाने में मदद की थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ रखा था, और आस्था ने अरमान के कोट को अपने हाथों से थाम रखा था, तो ये बात मलाइका की आंखों में चुभ गई थी, क्योंकि मलाइका अरमान सिंघानिया को सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार समझा करती थी। इसीलिए जब मलाइका ने ये देखा कि अरमान में खुद अपनी पसंद से उस लड़की को उठाकर कपड़े दिए हैं, तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। इसीलिए उसने गुस्से से मन ही मन में सोचा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे प्यार के द्वारा दिए गए कपड़े पहनने का, मैं भी देखती हूँ कि ये कपड़े तुम कैसे पहनती हो। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए मलाइका गुस्से से भर उठी। उसने जल्दी ही एक सेल्स गर्ल को अपने प्लान में शामिल करके आस्था को टारगेट किया। वहीं अरमान जो पूरी तरह से अपने काम में बिजी था, एक पल को भी उसने अपनी नजरें अपने आईपैड पर से नहीं हटाई थीं। उसके बाद उसका ध्यान देव की ओर चला गया। अरमान देरी ना करते हुए जल्दी ही देव के सामने जाकर खड़ा हो गया था। देव अपने सामने अपने बॉस को देखकर हैरान हो गया। उसने जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त देव भी अरमान का दिया हुआ काम लैपटॉप के थ्रू कर रहा था। वेल, तभी अरमान उसकी ओर देखकर कहने लगा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो हो गया? सारी मीटिंग की तैयारी हो गई? सारे पॉइंट अच्छी तरह से नोटिस कर लिए? क्योंकि अरमान पेरिस वाली मीटिंग खुद हैंडल कर रहा था, लेकिन जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को चेक करने के लिए दिए थे, ताकि देव के साथ देने से उसके दोनों काम एक साथ हो जाएं, क्योंकि आज अरमान की इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि एक जापान के क्लाइंट्स के साथ होनी थी और एक फ्रांस के क्लाइंट के साथ होनी थी। जबकि फ्रांस की मीटिंग की डिटेल्स तो वो खुद पर्सनली देख रहा था, और जापान वाली मीटिंग की डिटेल्स उसने देव को देखने के लिए दी थी। तो तब देव ने उसे बोला, ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं।